हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आर्ना की बात सुनकर रिदांश ने उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। ये महसूस करके आर्ना जल्दी से रिदांश से दूर होकर बिस्तर की दूसरी तरफ लेट गई। बेतहाशा धड़कते दिल के साथ उसने रिदांश की तरफ पीठ करके अपनी आंखें कसकर मींच लीं। कुछ ही देर में इंजेक्शन और दवा की वजह से वो फिर से गहरी नींद में चली गई। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो घड़ी में 7 बज चुके थे। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ बैठी, जिससे उसके पैर में हलचल हुई और वो दर्द से कराह उठी। तभी कमरे में सोफे पर बैठकर काम कर रहे रिदांश की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। रिदांश, ओलंपिक में रेस के लिए अप्लाई किया है तुमने? आर्ना कन्फ्यूज्ड होकर, जी? रिदांश तंज भरे लहजे में, नहीं, जिस तरह से तुम उठकर भागने वाली थी तो मुझे तो यही लगा। आर्ना फुसफुसाते हुए, इस इंसान का तो खाना ही हजम नहीं होता जब तक मुझे ताने ना मार ले, हमेशा राक्षस मोड ही ऑन रहता है बस। रिदांश अपनी आईब्रो उठाते हुए, कुछ कहा तुमने?
ना, नहीं, तो कुछ भी नहीं।
कुछ सोचते हुए, रात को, मेरा मतलब है कि कल रात को मेरे कपड़े किसने चेंज किए?
क्यों?
आर्ना, क्यों क्या, बस मुझे जानना है। रिदांश अपनी आईब्रो उठाते हुए, ऑर्डर दे रही हो मुझे?
आर्ना जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए, नहीं तो, बस पूछ रही थी।
रिदांश कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ, तो सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हें कोई भी जवाब देना मैं बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता।
लेकिन
रिदांश खड़े होकर आर्ना की बात बीच में ही काटते हुए, मैं समांथा को भेजता हूँ यहाँ, अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो उसे कह देना।
आर्ना हल्की नाराजगी से,
कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ।
रिदांश आर्ना के पैर की तरफ देखकर तंज भरे लहजे में,
ओ रियली?
आर्ना अपनी ईगो में आकर, यस ऑफ कोर्स।
रिदांश देन कंटिन्यू। इतना कहकर रिदांश कमरे से बाहर चला गया।
आर्ना रिदांश को जाते देख कुड़कर, हाव एरोगेंट, आह, अपने पैर को हिलाने की कोशिश करते हुए दर्द से कराह कर,
आह मम्मा, नहीं आर्ना, यू कैन डू इट, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, यस आर्ना, यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ।
आधे घंटे बाद रिदांश जब कमरे में वापस आया तो उसने आर्ना को बिस्तर के पास नीचे जमीन पर बैठा देखा। बाथरूम से उसके पास तक पैर से सने खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे।
रिदांश सख्त भाव से आर्ना के सामने जाकर, व्हाट द हेल, क्या है ये सब?
आर्ना अपने पैर को पकड़ते हुए, आई एम ओके।
रिदांश आर्ना के सामने बैठकर उसके खून निकलते हुए पैर को देखते हुए ब्लैंक एक्सप्रेशन से, अगर अपनी ईगो साइड में रखकर मुझे हेल्प के लिए बोल दोगी तो घिस नहीं जाओगी।
आर्ना नम आंखों से रिदांश की तरफ देखकर, अगर आप भी एक बार मेरे साथ नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर लेंगे तो आपकी शान में कमी नहीं आ जाएगी।
रिदांश ने आर्ना की बात पर बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे बिस्तर पर हेडबोर्ड के सहारे बैठा दिया।
आर्ना की आंखों से आंसू निकलने लगे।
रिदांश कोल्ड एक्सप्रेशन से, नाउ व्हाई आर यू क्राइंग?
आर्ना आंसुओं भरी आंखों से मासूम भाव से सुबकते हुए अपने पैर की तरफ इशारा करते हुए,
इट्स रियली रियली हर्ट्स।
रिदांश बिना कुछ बोले अपने फोन से नंबर डायल करता है, टॉम कॉल द डॉक्टर अर्जेंट।
इतना कहकर रिदांश फोन रख देता है और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ आर्ना की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर इस वक्त दर्द भरे भाव उभर रहे थे। कुछ ही देर में टॉम डॉक्टर को लेकर वहां आ जाता है।
डॉक्टर आर्ना का पैर देखते हुए, ये तो होना ही था, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन्हें प्रॉपर आराम की जरूरत है, लेकिन ऐसा ना करने की वजह से इनके पैर के स्टिचेस खुल गए हैं।
रिदांश सख्त और घमंड भरे भाव से, यहाँ तुम्हारे इस फिजूल ज्ञान की किसी को कोई जरूरत नहीं है, तो चुपचाप जो करने आए हो वो करो, देन गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर।
डॉक्टर अपना थूक कटकते हुए,
जी सर।
डॉक्टर ने आर्ना के पैर पर दोबारा स्टिचेस लगाकर पट्टी करने के बाद उसे इंजेक्शन देकर वहां से टॉम के साथ चला जाता है। कुछ देर बाद प्रिशा के साथ कल्पना जी रिदांश के कमरे में आती हैं।
रिदांश कल्पना जी को देखकर,
माँ आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको तो आराम करना चाहिए था ना, मैं आया था आपसे मिलने पर आप सो रही थीं।
कल्पना जी आर्ना को देखते हुए,
मैं अरु को मिलने आई थी, उसे चोट लगी है ना?
प्रिशा, माँ जिद कर रही थी कि उन्हें आपसे मिलना है, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। कैसी हैं अब भाभी आप?
आर्ना, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
कल्पना जी, आरना के पास बैठकर ऋदु कहता है कि दूध पीने से स्ट्रांग होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तुम भी दूध पियोगी तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगी और स्ट्रांग भी हो जाओगी मेरी तरह। आरना हल्का सा मुस्कुराकर, जी। प्रिशा, आप रुकें, मैं समांथा को कहकर आपका नाश्ता यहीं भिजवाती हूँ। आपको भूख भी लगी होगी ना, और हम लोगों ने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया। ओके। इसके बाद प्रिशा कमरे से चली जाती है और कुछ ही देर में समांथा के साथ नाश्ते की ट्रॉली लेकर कमरे में वापस आती है। रिदांश, समांथा से घर के बाकी काम के लिए आज ही बाकी के नौकर अरेंज करो। समांथा अपने हाथ बांधे हुए सर झुकाकर, यस मास्टर। इतना कहकर समांथा कमरे से चली जाती है। प्रिशा नाश्ते की प्लेट बनाते हुए, भाई आप ऑफिस नहीं जाएंगे आज? नहीं, माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं घर से ही काम करूँगा। ओके भाई, तो आइए ना, हम लोगों को ज्वाइन कीजिए ना। नो, यू कैरी ऑन, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ओके भाई। इसके बाद रिदांश वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। नाश्ता करने के कुछ देर बाद इंजेक्शन और दवाई से आरना की नींद लग जाती है। प्रिशा कल्पना जी को लेकर वहाँ से अपने कमरे में वापस चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ नैना भी आ जाती है और दोनों मिलकर कल्पना जी से बात करने की कोशिश करने लगती हैं। यूं ही दो दिन बीत गए थे और आरना अभी भी प्रॉपर बेड रेस्ट पर थी। हालांकि उसका पैर कुछ बेहतर हो चुका था, लेकिन अभी भी घाव हरा ही था, इसीलिए डॉक्टर ने उसे आराम करने की ही सलाह दी थी। इस बीच रिदांश ने आरना को परेशान करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं किया था, बल्कि घर में सारे नौकर भी वापस रख लिए गए थे। हालांकि ऐसा क्यों किया गया, इस बात से आरना अभी भी असमंजस में थी। हालांकि रिदांश के चेहरे पर अभी भी आरना को पूरे वक्त सिर्फ कोल्ड और ब्लैंक एक्सप्रेशन ही नजर आ रहे थे, जिन्हें हमेशा की तरह आरना के लिए पढ़ पाना नामुमकिन ही था। मगर जो भी था, लेकिन बीते दो दिन आरना के लिए पहली बार यहाँ आने के बाद सुकून भरे रहे और रिदांश ने अपनी तरफ से उसे परेशान या टॉर्चर करने की कोई पहल नहीं की थी, जो बात कहीं ना कहीं आरना की नज़रों में रिदांश को शक के घेरे में खड़ा कर रही थी। पर वो कर भी क्या सकती थी। शाम का वक्त था और आरना अपने कमरे में बिस्तर के हेडबोर्ड से सर टिकाए आंखें बंद करके लेटी थी कि तभी उसके कानों में नैना की आवाज़ पड़ी और वो अपनी आंखें खोलकर अपने सामने नैना को देखती है। नैना, तू? नैना अंदर आते हुए, हाँ मैं, तुझे क्या लगा? अगर तू कुछ नहीं बताएगी तो मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। वो तो एक इमरजेंसी के चलते दादाजी के यहाँ इंदौर जाना पड़ा। वो तो शुक्र है आज कॉलेज में प्रिशा ने मुझे सब बता दिया और मैं कॉलेज से सीधा यहाँ तुझे देखने के लिए आ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नैना, लेकिन तूने ये बात पापा या राहुल को तो नहीं बताई ना, क्योंकि वरना वो लोग बेवजह परेशान हो जाएंगे। दोनों काम को लेकर ऑलरेडी इतना परेशान है और तू तो राहुल को जानती है कि अगर उसे पता चला तो सब छोड़ छाड़ कर यहीं आ जाएगा। नहीं, अभी तक तो मैंने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया है और अगर तुम चाहो तो मुझे सब कुछ बिल्कुल सच सच बता दो। मतलब? नैना आरना के पास फुदक कर बैठते हुए, मतलब ये कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई में एक एक्सीडेंट था या फिर ये कोई सोची समझी चाल थी?
ऐसा कुछ भी नहीं है नैना, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। नैना खड़े होकर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, देख अरु, तू मुझे सब कुछ साफ साफ बता सकती है और अगर इस सब में उस भस्मासुर का हाथ है ना, तो तू मुझे बिल्कुल भी कमजोर मत समझ। तुझे हर्ट करने के बदले में मैं उसको छोड़ूंगी नहीं और बाय गॉड मैं उस भस्मासुर का कीमा बना दूंगी। होगा वो कोई भस्मासुर, लेकिन वक्त पड़ने पर मैं भी किसी ताड़का से कम नहीं हूँ। आरना मुस्कुरा कर, नैना ए, आरना कहते कहते ही बीच में रुक जाती है और हैरानी से उसका मुंह खुला रह जाता है। आरना को यूं बीच में चुप देखकर उसकी आंखों को फॉलो करते हुए नैना भी मुड़कर दरवाजे की तरफ देखती है, जहां रिदांश फुल टेंशन और एटीट्यूड के साथ अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ दिए हुए नैना और आरना की दिशा में देखते हुए ही खड़ा था। इस वक्त उसका एटीट्यूड और चेहरे के तीखे भाव देखकर कुछ पल के लिए नैना की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी।